بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، देखो वही कल जो बात चल रही थी, हिम्मत और इखलास। कि इखलास और उसी को हिम्मत को दूसरे अल्फाज में कहते हैं सिद्क, और सिद्क कहते हैं तरीका, सही सही तरीका। और सही तरीका वो सुन्नत तरीका है, तो गोया सुन्नत पर अमल हो और इखलास के साथ में हो, तो दोनों चीजें मिलेगी तो इंसान आगे बढ़ सकता है। उस पर बात चल रही थी, और इन दोनों को हासिल करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। इखलास के बारे में आया फरमा, तमाम आमाल की रूह है। रूह जैसे इंसान का जिस्म बगैर रूह के बेकार है, ऐसे आमाल बगैर इखलास के बेकार है। तो असल हिम्मत ही है, इसीलिए हजरत वाला ने फरमाया कि सारे आमाल का खुलासा इखलास और हिम्मत है। फिर आगे फरमाया कि इन दोनों चीजों में भी असल हिम्मत ही है, क्योंकि इखलास पैदा करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। इखलास इखलास भी हिम्मत के बगैर पैदा नहीं होता। इसलिए कि जब इंसान मसलन नमाज पढ़ने के लिए जाता है, तो अब नफ्स और शैतान उसके दिल में एक चरका लगाते हैं, सोच लगाते हैं कि आज जब तू नमाज के लिए खड़ा होगा और लोग तुझे देखेंगे, तो तुझे मुत्तकी और परहेजगार, बड़ा आबिद और जाहिद समझेंगे। शैतान दिल में ये वसवसा डाल देता है कि आज तू जो नमाज पढ़ेगा ना, तो उसमें लोग तुझे देखेंगे, मुत्तकी परहेजगार आबिद जाहिद समझेंगे। चुनांचे खुद भी लोगों को दिखाने के लिए अपनी नमाज में और ज्यादा खुशुखुजू पैदा करेगा। अब शैतान और नफ्स ने लोगों को दिखाने की जो बात दिल में डाल दी है, उससे नजात के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। उससे नजात के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। वो हिम्मत ये कि दिल में ये सोचे कि इस मखलूक को छोड़ो, इसलिए कि मखलूक की तारीफ और मखलूक की मजम्मत का क्या एतबार। अगर ये खुश हो जाए तो क्या, और बुराई करे तो क्या। हिम्मत की जरूरत है। मखलूक से नजर हटा दो। इस वक्त में हमारी नजर मखलूक पर है। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या समझेगा। तो ये कह रहे मखलूक को छोड़ो, इसलिए कि मखलूक की तारीफ और मखलूक की मजम्मत का क्या एतबार। अगर ये खुश हो जाए तो क्या, और बुराई करे तो क्या। इखलास वाला मखलूक की तारीफ और बुराई को नहीं देखता है, और उससे नहीं डरता भी है। बोले करने दो उनको जो करना है, और मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा, मुझे अल्लाह के लिए करना है। इस तरह सोचकर दिखावे का जो ख्याल दिल में आया था उसको निकाले, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत है। वरना नफ्स का तकाजा तो ये होता है कि लोगों की तारीफ से मजा लो, लेकिन उस तकाजे को दिल से निकालने के लिए हिम्मत करनी पड़े, वरना तो लोगों की तारीफ में मजा आएगा। हाँ देखो मेरे फुला काम से उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। आज एक इंसान जब अपनी फजीलत बताता है तो लोगों की कमेंट्स देता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और उसने मेरे बारे में यूं कहा, उसने ये सोचा है, ताकि अपनी बड़ाई जाहिर हो। और आजकल दुनिया वही देख रही है जी। तो उसके लिए हिम्मत की जरूरत है। अपना काम कर लो, ताईद करे लोग या बुराई करे, तुम काम अल्लाह की रजा के लिए शुरू करोगे तो काम चल पड़ेगा। दावत तबलीग का जब काम शुरू हुआ है, तो क्या इखलास था कि उस जमाने के किसी आलिम को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको करते रहे करते रहे, यहां तक के उन उलमा की भी समझ में बात आ गई। वो इखलास की वजह से करते रहे बावजूद ये कि उलमा को समझ में नहीं आ रहा है, और फिर भी करते रहे। वो इखलास था कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो वो आज उनकी इखलास की वजह से सारी दुनिया में काम गया। अरे जी कैसे कट हो गया, समझ में नहीं आया सब जगह। जी अब ठीक है। हाँ तो ये हिम्मत की जरूरत है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये काम को शुरू किया, वो इखलास था, उनका इखलास इतना कामिल दर्जे का था कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इस काम को इतने सालों तक चलाया और इसकी हिफाजत फरमाई, और चल रहा है और कयामत तक इंशाल्लाह चले। वो इखलास की बरकत थी। तो ये है कि एक इंसान जब नेकी का काम या कोई अच्छा काम शुरू करता है, अल्लाह के लिए करता है, तो लोगों के कहने की वजह से बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करते जाए, और किसी की मुखालिफत में कोई जवाब न दे। खामोशी इखलास खुद इस बात के रास्ते खोल देता है। देखो लोग जब किसी की तारीफ करते हैं ना, तो कभी उसके इल्म की तारीफ कर दी, माशाल्लाह क्या इल्म है, कभी उसके अमल की तारीफ कर दी, कभी उसके अखलाक की तारीफ कर दी। तो जिसकी तारीफ की जाती है उसको बड़ी खुशी होती है, जिसकी तारीफ की जाती है उसको बड़ी खुशी होती है। और होगी, कितने सारे लोग मेरे इल्म की तारीफ कर रहे हैं, इस तारीफ के नतीजे में रफ्ता रफ्ता दिल में ये घमंड पैदा हो जाता है, तकब्बुर पैदा हो जाता है कि इतने सारे बिला वजह तो तारीफ नहीं कर रहे हैं, जरूर मेरे अंदर इल्म होगा तभी तो ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा इस तारीफ के जरिए इंसान घमंड में मुब्तला हो जाता है। भाई किसका माइक ऑन है या आवाज आ रही? तो बंद करेगा। तो तभी तो ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लिहाजा इस तारीफ के जरिए इंसान घमंड में मुब्तला हो जाता है, इसलिए ये तारीफ बड़ी खराब थी। अगर उसका इलाज न किया जाए तो इंसान को खराब कर देती है, इसलिए फरमाया गया तुराब, यानी तारीफ करने वालों के मुंह में मिट्टी डाल दो। तारीफ करने वाले मुंह में मिट्टी डाल दो, तो अब क्या मतलब, मिट्टी उठा के डाल देने के बोले हाँ यानी इसको तो भाई तारीफ नहीं कर, क्योंकि तारीफ चीज ये इसी है कि इंसान फूल जाता है, तो बेकिंग पाउडर डालते हैं ना फूल जाता है ना, ऐसे इंसान फूल जाता है। भाई कौन है? अल्लाह ये क्या दर्श करे या बंद कर दे, बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ना, जिसका समझ में आ रहा हो उसको अभी कट कर दो, क्योंकि वो शायद पता ही नहीं होगा या मालूम नहीं होगा कैसे करें। तो ठीक है, दिल में पैदा होने वाले घमंड का इलाज। अब जाहिर बात है, कोई अगर उसने तारीफ कर दी तो दिल में जो घमंड पैदा होता है, लिहाजा अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे उसके नतीजे में दिल में घमंड पैदा हो रहा है, तो उसका इलाज करे। क्या आ रही है? अच्छा ठीक है, चलो तो उसका इलाज करे। उसका इलाज यह है कि दिल में फौरन उसका इस्तेहजार करे कि अल्लाह ताला ने इस बंदे पर मेरे महासिन जाहिर फरमा दिए। क्या इस्तेजार करे? अल्लाह ताला ने इस बंदे पर मेरी अच्छाई जाहिर फरमा दी, अगर कहीं मेरे ऐब और अयूब उस पर जाहिर हो जाते तो शख्स मुझसे नफरत करता, अयूब जाहिर हो जाते तो मुझसे नफरत करता, और साथ में ये सोचे कि इसकी तारीफ से मुझे क्या हासिल होगा। एक मरतबा जब उसने तारीफ की तो सुनकर बड़ा मजा आया, लेकिन वो मजा सुनने के बाद खत्म हो गया, मजा तो खत्म हो जाता है। लिहाजा इस मजे को बरकरार रखने के लिए तारीफ करने वाले से कहो कि जरा एक मरतबा और मेरी तारीफ कर दे, क्या उसे दरखास्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। अलबत्ता उसने जो एक मरतबा तारीफ की, बैठे हुए उसका तस्वुर करते रहो कि उसने कितनी अच्छी बात कही थी, कैसा मजा आया था। लेकिन इस तस्वुर से कौन सा दुनिया का या दीन का फायदा हासिल होगा? हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह तारीफ करने पर एक बहुत अच्छा शेर सुनाया करते। चलो बहुत डिस्टर्ब होता है, अल्लाह माफ करे। चलो आगे चलो। एक मरतबा जब उसने तारीफ की तो बैठे हुए तस्वुर उसने कितनी अच्छी बात कही थी, कैसा मजा आया था। लेकिन उस तस्वुर से कौन सा दुनिया का है दीन का फायदा हासिल? हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तारीफ करने पर एक बहुत अच्छा शेर सुनाया करते, अगर इंसान उसका इस्तेहजार कर ले तो तारीफ के फितने से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। सर्द हो जाती है हुब्बे जाह दुनिया, हुब्बे जाहे दुनिया जिसके बाद, सर्द हो जाती है हुब्बे जाहे दुनिया जिसके बाद, एक जरा सी बात है ये दिल के फिर क्या उसके बाद, एक जरा सी बात है ये दिल के फिर क्या उसके बाद। सर्द हो जाती है हुब्बे जाहे दुनिया जिसके बाद, एक जरा सी बात है ये दिल के फिर क्या उसके बाद। यानी जब कोई शख्स तारीफ कर रहा हो कि आपका इल्म बहुत आला, आपका इल्म बहुत आला, जी अभी तो ठीक है, यानी जब कोई शख्स तारीफ कर रहा हो कि आपका इल्म बहुत आला है, आप बड़े आला दर्जे के मुफ्ती है, आप अच्छे मुकर्रर है, आप अच्छे मुसन्निफ है, आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, आपने बड़ा अच्छा दर्स दिया है, आपने बड़ा अच्छा वाज कहा, उस वक्त जरा सी बात सोच लो कि दिल फिर क्या है उसके बाद। जरा सा सोच लो कि दिल फिर क्या है उसके बाद, यानी उसकी तारीफ के बाद क्या है? कुछ भी नहीं, जो तारीफ उसने की थी वो हवा में उड़ गई। मजा तो उस वक्त है, अरे मजा तो उस वक्त है जब अल्लाह ताला फरमा दे कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राजियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मजा तो उस वक्त है, उसको सोचो और उसकी फिक्र करो कि ये क्या कि दूसरे की तारीफ पर खुश हो गया कि फुलाने मुझे अच्छा कह दिया, फुलाने ने मेरी तारीफ कर दी। लेकिन चूंकि इंसान का नफ्स उजलत पसंद है जल्दी, इसलिए जो फौरी तारीफ हो रही है उसकी तरफ भागता है, उसकी तरफ उसको कशिश और मैलान होता है, फिर उस कशिश और मैलान यानी खींचाव होता है। कशिश और मैलान के नतीजे में इंसान ये चाहता है कि मैं और अच्छा काम करूं ताकि और अपनी तारीफ सुनूं। अब नफ्स दोबारा तारीफ कराने के लिए वो काम करा रहा है, नफ्स दोबारा तारीफ कराने के लिए वो काम करा रहा है। लिहाजा नफ्स को इस ख्याल से हटाने के लिए और उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तो देखो, एक मरतबा इंसान काम करता है, लोग तारीफ कर रहे थे, अब दोबारा काम कर रहा है ताकि लोग तारीफ करे, तो अल्लाह के लिए नहीं हुआ, फिर वो लोगों की तारीफ के लिए हो गया। और ये तो आम चीज है कि होता है, तो इसलिए फरमाया कि देखो इसमें भी हिम्मत की जरूरत है कि हमें काम करते रहना चाहिए जिसके लिए शुरू किया था, अल्लाह के लिए। इसीलिए हजरत वाला ने फरमाया कि हिम्मत इसलिए असल है कि इखलास के हासिल करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, अगर हिम्मत न हो तो इखलास भी हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा खुलासा ये निकला कि इंसान हिम्मत हासिल करने की फिक्र करे और उसको अपने अंदर पैदा करे, हिम्मत हासिल करने की फिक्र करे, उसको अपने अंदर पैदा करे। हिम्मत के अंदर बड़ी ताकत है। देखो अल्लाह ताला ने इंसान को हिम्मत में, इंसान की हिम्मत में बड़ी जबरदस्त ताकत रखी। यही हिम्मत है जिसने इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। 100 साल पहले चांद पर जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उस वक्त अगर ये कहा जाता कि चांद पर चले जाओ तो सामने वाला सुनकर ही जवाब देता कि तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब है। उस जमाने में इंसान के हवा में उड़ने को नामुमकिन और महाल समझा जाता था। चुनाच अरबी की मशहूर लुगत है सिहा, उसके मुसन्निफ इस्माइल बिन हम्माद जौहरी गुजरे हैं, जो अरबी लुगत के इमाम माने जाते हैं। उनको बाद लोगों ने उकलाउल मजानीन में शुमार किया, यानी वो थे तो बड़े आकिल, फिर भी हमाकत कर ली, बेवकूफी, बेवकूफों में अकलमंद थे तो बड़े अकलमंद, लेकिन फिर भी उनसे बेवकूफी होगी। उनके दिमाग में ये अहमकाना ख्याल आया, बेवकूफाना ख्याल आया कि मैं हवा में उड़ू। चुनाचे उन्होंने पहले तो हवा में उड़ने की मश्क की। कुछ अरसे तक मश्क करने के बाद एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज मैं जामे मस्जिद के मीनारे के ऊपर से लोगों को उड़कर दिखाऊंगा। चुनाचे ऐलान सुनकर हजारों अफराद वहां जमा हो गए और ये मीनारे पर चढ़ गए और वहां से अपने उड़ने का मुजाहरा करना चाहा, उसी यानी दिखाना चाहा, उसी मुजाहरे के दौरान धड़ाम से नीचे गिरे और वहीं इंतकाल हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि उकलाउल मजानीन में से थे। बहरहाल उस जमाने में उड़ने की कोशिश को हिमाकत समझा जाता था, लेकिन उसी हिम्मत ने तरक्की की। तरक्की करते करते इंसान ने उड़ना शुरू कर दिया। हवा में सबसे पहला उड़ने वाला इंसान मुसलमान था। सबसे पहला इंसान जो हवा में उड़ा वो तुर्की का एक मुसलमान था। लोगों ने ये गलत मशहूर कर रखा है कि सबसे पहले राइट ब्रादरन ने हवाई जहाज इजाद किया, लेकिन सही यह है कि दुनिया में सबसे पहले उड़ने का जो हकीकी मुजाहरा किया यानी दिखाया, वो खिलाफते उस्मानिया के दौर में तुर्की के एक मुसलमान ने किया। आज भी उसके पर इस्तुम्बुल में, बुर्जे गलाता में लटके हुए हैं। उसके पर इस्तुम्बुल में, बुर्ज गलाता में लटके हुए हैं। जिन परों से उसने उड़ने का मुजाहरा किया था, उनसे 8 मील की मुसाफत उड़कर तय की। ओ, 8 मील की मसाफत उड़कर तय की। बुर्जे गलाता से उड़ा और आबनाए बास्फोर्स को उबूर किया। 8 मील उड़ने के बाद अपनी परवाज खत्म की। वो दुनिया में उड़ने वाला सबसे पहला इंसान था। जी, तो वो हिम्मत ने कहां पहुंचा दिया, वो किस तरह उड़ा, हिम्मत के जरिए। फिर उसी हिम्मत ने और तरक्की की तो हवाई जहाज की शक्ल इख्तियार कर ली। इब्तिदा में हवाई जहाज ऐसे होते थे कि उसमें बैठना भी मुश्किल था। उसी हिम्मत ने और तरक्की की तो पंखे का जहाज इजाद हो गया, और हिम्मत ने तरक्की की तो जेट जहाज इजाद हो गया, और हिम्मत ने तरक्की की तो कंकाड़ इजाद हो गया, जो आज की नई इजाद, कंकाड़। हिम्मत ने और तरक्की की तो इंसान ने खला में पहुंच गया। बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान की हिम्मत में बड़ी ताकत रखी है। अभी इंसान का काम है इस हिम्मत को जहां चाहे लगा दे, चाहे अच्छे काम में लगा दे, चाहे बुरे काम में लगा दे, हिम्मत है। लेकिन तुम इस हिम्मत को अच्छे काम में लगाओ और इस हिम्मत के जरिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मुसख़र करो, नाजायज उठने वाले तकाजों को दबाने में हिम्मत को इस्तेमाल करो, फिर देखो कि हिम्मत तुम्हें क्या क्या करिश्मे दिखाती है। हाँ, वरना तो क्या होगा, इंसान सुस्त पड़ा रहेगा, बोले क्या हुआ, नहीं होता है मेरे से, नहीं होता है। अरे हिम्मत से काम लेना है जी, हिम्मत से ही सारे दुनिया के काम चल रहे हैं। वरना इंसान की फितरत तो ऐसी है कि कुछ भी ना करे, बेकार बैठा रहे। हिम्मत से ही काम होता है, गुनाहों से बचने के लिए और नेकियों के करने के लिए, दोनों के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। फिर इस हिम्मत को पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अहले हिम्मत की सोहबत इख्तियार करो। हिम्मत पैदा करने के लिए जो हिम्मत वाले हैं, हर वक्त अपने आप को गुनाहों से बचा रहे, आमाल पे लगा रहे हैं और इखलास वाले हैं, ये हिम्मत वाले हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनके पास उठो बैठो, तो रफ्ता रफ्ता उनकी हिम्मत तुम्हारी तरफ भी मुंतकिल हो जाएगी। देखो सौगत का असर पड़ेगा तो तुम्हारे अंदर वो भी मुंतकिल हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि अहले हिम्मत के हालात पढ़ो। एक तो सोहबत में बैठो, और अगर सोहबत न मिले, तो सोहबत हर वक्त नहीं मिल सकती है, उनके पास मजलिस में हर वक्त बैठा नहीं जा सकता, तो फरमाया अपने अपने इलाके में रहते हुए हिम्मत वालों के हालात पढ़ो, उसके जरिए उनकी हिम्मत तुम्हारी तरफ मुंतकिल होगी। और तीसरा तरीका यह है कि हिम्मत का इस्तेहजार करो। तीसरा तरीका हिम्मत का इस्तेहजार करो, मसलन ये कि किसी इबादत में कोताही हो जाने पर अपने लिए कुछ सजा मुकरर कर लो, इसको कहते हैं हिम्मत को दिखाना। तो एक तो सोहबत सालिहीन, ये भी कुरान में, फिर फरमाया उनके किस्से उनके वो पढ़े, सीरत को पढ़े, उनके किस्सों को पढ़े। दूसरा तरीका अहले हिम्मत के हालात को पढ़े, तो सहाबा के हालात पढ़ो, सबसे बड़ी हिम्मत वाले थे, औलिया किराम के हालात पढ़े। और तीसरा यह है कि हिम्मत का इस्तेजार करो, कोई अगर कोताही हो जाए तो सजा मुकर, इसी तरह गुनाह हो जाने पर सजा मुकर कर लो। मसलन ये कि अगर मैंने फुला गुनाह कर लिया और हिम्मत करके उस गुनाह से न रुका, तो मैं इतनी रकातें नफल पढ़ूंगा, इतने पैसे सदका करूंगा। अलबत्ता ये सजा न तो बहुत ज्यादा हो कि आदमी उस सजा पर अमल ही न कर सके, और न इतनी मामूली सजा हो कि उसकी अहमियत ही मालूम न हो, बल्कि गुनाह हो जाने पर 4 रकात या 6 रकात मुकर्रर कर लो। इसका नतीजा ये होगा कि जब नफ्स इस गुनाह पर उकसाएगा, तो उस वक्त ये ख्याल आएगा कि अगर मैंने गुनाह कर लिया तो मुझे 6 रकातें पढ़नी पड़ेगी। इसके नतीजे में गुनाह से बचने की हिम्मत में पुख्तगी पैदा हो जाएगी। हर एक की अपनी अपनी, देख ले कि क्या किस चीज नफ्स क्या चीज को चाह रहा है, बस उसको कहने का कि भाई तुझे ये काम तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन हर आदमी की हिम्मत को बढ़ाने और उससे काम लेने का तरीका अलग होता है। हर आदमी की हिम्मत को बढ़ाना और उससे काम लेने का तरीका अलग होता है। उस एक ही नुस्खा हर एक को घोंट कर नहीं पिलाया जा सकता, हर एक की हिम्मत के लिए अलग अलग तरीका होता है बढ़ाने के लिए। इसलिए शेख ये फैसला करता है कि इस आदमी की हिम्मत को काम में लाने के लिए कौन सा तरीका मुनासिब होगा। शेख ये काम फैसला करता है। अगर तुम अपनी खुद राय से करोगे, खुद ही हिम्मत करके खुद ही कुछ ना कुछ करोगे, खुद राय से करोगे, तो बाज औकात ठोकर खा जाओगे। और किसी शेख से ताल्लुक रखने का फायदा ये होता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मुनासिब हाल एक तरीका मुतय्यन कर देता है जो तुम्हारी हिम्मत को काम में लाने के लिए मुनासिब होगा। देखो हर जगह पर दीन बताया जाता है, फिर इस दीन पर चलने के लिए फरमाया जैसे हिम्मत है, तो हम हिम्मत खुद तो नहीं कर सकता, तो या तो सोहबत सालिहीन भी, हालात भी, और अपने लिए क्या तजवीज मुतय्यन करना गुनाह हो जाए, तो फरमाया किसी शेख को पकड़े। शरीयत के बाद अमल में तो किसी से पूछने की जरूरत, तो डायरेक्ट अमल करना है, लेकिन बाज अमल के लिए शेख की जरूरत होती है। जैसे सेहत के लिए, इंसानी जिस्मानी सेहत के लिए, अच्छे खाने के लिए किसी डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बीमार हो जाओ तो डॉक्टर से पूछने की जरूरत होती है कि अब दवा तो पूछ कर लो। तो ऐसे ही रूहानी सेहत के लिए जो आमाल है उसमें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन आमाल करते करते बीमारी आ जाए तो फिर इस बीमारी को निकालने के लिए डॉक्टर से रुजू करना जरूरी जी। इसलिए लोग कहते हैं क्या हर एक हम कैसे शेख को बनावे, तो क्या हर जगह पर, भाई देखो जिस्मानी के लिए हमें कैसे जरूरत, कोई अच्छा खाने के लिए किसी डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं, लेकिन बीमारी आ गई तो बीमारी को दूर करने के लिए जरूरत है। उसमें कोई कह सकता है कि नहीं नहीं अब तो उसमें नहीं, वो भी अपनी मर्जी से कर लो, नहीं। ऐसे ही अच्छा अमल करो, कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, लेकिन बीमारी आ गई, और बीमारी तो सब जानते हैं, जितना पढ़ा गया है सब बीमारियां हैं। हमारे अंदर रियाकारी है, हमारे अंदर तकब्बुर है, हमारे अंदर बदगुमानी है, हसद है, सारी बीमारियां। अब ये बीमारी को इलाज के लिए जाहिर बात है डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, वरना आप नमाज पढ़ रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे आपको हमें पूछने की जरूरत, पढ़ लो नवाफिल, पढ़ना चाहे पढ़ लो, रोजा रखना चाहे रख लो, आप सदका खैरा जितना चाहे कर लो, अच्छे आमाल है, अच्छे आमाल करते रहो बगैर पूछे, कोई जरूरत नहीं है। हाँ बीमारी है तो उसका इलाज कराओ। तो ये है, तो इसलिए हजरत ने फरमाया कि देखो ये खुद से नहीं कर सकता, बल्कि किसी शेख से ताल्लुक रखने का फायदा ये होता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मुनासिब हाल एक तरीका मुतय्यन कर देता है जो तुम्हारी हिम्मत को काम में लाने के लिए मुनासिब होगा। जी, तो आज की बात का खुलासा ये निकला कि सारे दीन पर अमल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज हिम्मत है। जी, सबसे बुनियादी चीज हिम्मत है, और हिम्मत को तकवियत देने के लिए अहले हिम्मत की सोहबत में उठना बैठना चाहिए, और अहले हिम्मत के हालात और उनके मलफूजात पढ़ना चाहिए, और उसके जरिए रफ्ता रफ्ता इंसान के अंदर खुद ब खुद हिम्मत पैदा हो जाती है। अलबत्ता ये सब काम किसी शेख की निगरानी में ही करना चाहिए, अलबत्ता ये सब काम किसी शेख की निगरानी में ही करना चाहिए, उसके बगैर बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। हाँ, क्योंकि कहाँ से कहाँ निकल जाता है, क्योंकि इंसान का नफ्स है खुद ब खुद, वो जब नफ्स खुद अपने को सजा तय करेगा और खुद कोई किताब पढ़ेगा, किसी के हालात पढ़ेगा, तो बजाय वो बीमारी दूर होने के दूसरी कई बीमारियां दाखिल कर देगा, क्योंकि नफ्स बड़ा बदमाश है। वो कहेगा भी क्या, इसकी किताब पढ़, देख तूने फुला सबक के अंदर सुना था कि ऐसे हिम्मत वालों की हालात को पढ़ना चाहिए, तो चलो हमने वो किताब निकाली, उसने पढ़ लिया, अब उसकी अपनी एक बीमारी थी वो तो दूर हो गई, लेकिन दूसरी दो बीमारियां दाखिल कर दी। अब वो उसको पता नहीं है, लेकिन नफ्स है ही बड़ा बदमाश, एक चीज को निकालेगा दो चीज और दाखिल करेगा, क्योंकि नफ्स का काम है जब तक कि नफ्स की इसलाह ना हो, और नफ्स की इसलाह, इसीलिए तो फरमाया कि तवाजु वाले काम अगर किसी शेख ने किसी को बताए हैं तो तुम उसको देखकर खुद भी मत करो, क्योंकि खुद करने जाओगे तो तुम्हारे अंदर तवाजु के बजाय और तकबर बढ़ेगा। क्या हुआ कि नफ्स ने आपको मार दिया, क्योंकि बगैर पूछे आपने लिया है, तो हालांकि काम तो तवाजु कर रहे हैं, और तकब्बुर कैसे आ रहा है। तो ऐसे ही आप ऐसे हालात पड़ोंगे जो हिम्मत वालों के हैं, फिर दूसरी बीमारियां कैसे आ गई, हिम्मत आनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है ना, अब उसको मैं ज्यादा समझा भी नहीं सकता, ये ऐसी चीजें हैं कि इंसान बस, बहरहाल कहने का मकसद ये कि किसी शेख की निगरानी में ये काम होना चाहिए, किसी डॉक्टर की निगरानी में ये काम होना चाहिए, रूहानी डॉक्टर की जरूरत होती है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने फजल व करम से हम सबको हिम्मत अता फरमाए। जी अब फरमाया हजरत वाला ने, इरशाद फरमाया, ये तो सारी बात थी हजरत वाला की, एक मलफूज पढ़ा था जिसकी सारी तफसीर में बात आ गई। तो इसमें क्या था, इखलास और हिम्मत। तो इखलास क्या है, इखलास सारे आमालों की रूह है। तो अब इखलास के लाने के तरीके भी बता दिए। फरमाया हाल की दो किस्में, हजरत वाला ने इरशाद फरमाया तसव्वुफ में रुसूख आमाले इख्तियारिया मतलूब है, निज मामूर भी ही मोहब्बत अकली है, न के तबई। मामूर भी ही मोहब्बत अकली है, मोहब्बत अकली है, न के तबई। हाल के दो माना है, एक तो कैफियत गैर इख्तियारिया, हाल के दो माना है, एक तो कैफियत गैर इख्तियारिया और दूसरा रुसूख आमाले इख्तियारिया। दूसरे माने में हाल का तरतुब लाजिम है क्योंकि वो मौजूद है। अरे बहुत हार्ड है, इसको इंशाअल्लाह आइंदा कल करेंगे ताकि इसमें तफसील से बात हो सके। जी, वरना सारा ऊपर से जाएगा, यह हाल को बताना चाहते हैं, हाल मतलब और हाल अकली और गैर तबई। तो जी थोड़ी देर मुराकबा कर ले। आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तसव्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। अपने दिल की तरफ ध्यान दे और अपने दिल की धड़कनों की सुनने की कोशिश करें।